స్వయంరూపకదామయం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీవిశాఖాన్వితం నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే. कल हमने एंड किया था लोकालोक पर्वत तक हम पहुंच गए थे. लोकालोक पर्वत के आगे हमने देखा था कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है. लोकालोक पर्वत के ऊपर चार हाथी रहते हैं और ये चारों हाथी ब्रह्मा जी के द्वारा इस ब्रह्मांड का या इस भूमंडल का संतुलन बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने इन चार हाथियों को स्थापित किया हुआ है. वहां तक हमने डिस्कस किया था कल. और उसके आगे फिर हमने डिस्कस किया था कि सूर्य देवता कहाँ तक प्रकाश पहुंचाते हैं. सूर्य की स्थिति ब्रह्मांड के ऑलमोस्ट बीच में होती है. ऑलमोस्ट बीच में मतलब धरती से करीब 1 लाख योजन ऊपर भूलोक और स्वर्ग लोक के बीच में सूर्य देवता की स्थिति होती है. इसको अंतरिक्ष भी बोला जाता है. इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्पेस. और सूर्य कल भी हमने डिस्कस किया था कि सूर्य का जो रथ है उसका एक पहिया है, दूसरा जो धुरी है वो सुमेरु पर्वत के ऊपर स्थित है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव में कई बार गाय के द्वारा कोल्हू का बैल आपने सुना है. बैल के द्वारा जब वो ऑयल को प्रेस किया जाता है तो एक बैल को बांधा जाता है, बैल गोल गोल घूमता है उसके चारों तरफ, कोल्हू के चारों तरफ. उस प्रकार से सूर्य की स्थिति है. सूर्य सुमेरु पर्वत जो है वो कोल्हू के समान है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमते हैं. सूर्य की स्पीड जो है और सूर्य का रथ का एक स्पोक जो है वो सुमेरु पर्वत पे होता है और दूसरा एक पहिया जो है वो मानसोत्तर पर्वत पे होता है. मानसोत्तर पर्वत जो कि लोकालोक पर्वत के पहले आता है. तो उस ध्रुवी में सूर्यदेव ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते हैं. सूर्य का कितना डिस्टेंस चलते हैं, 9,51,00,000 योजन उनका हर दिन का ट्रेवल है. 24 घंटे मतलब एक एक क्षण में सूर्य 16,000 मील चलते हैं. बहुत फास्ट स्पीड है. 16,000 मील मतलब 24,000 किलोमीटर एक सेकंड में सूर्यदेव की स्पीड होती है, रथ की स्पीड होती है. अभी सूर्यदेव जहां पे हैं वहां से अगर हम देखें सुमेरु पर्वत के चार दिशाओं में चार अलग अलग देवताओं की राजधानी है. उत्तर पूर्व दिशा में इंद्र की राजधानी है जिसको देवधानी भी बोलते हैं. उसको अलकापुरी, कई बार अलकापुरी बोला जाता है परंतु अलकापुरी एक्चुअली कुबेर की राजधानी है. इंद्र की राजधानी को देवधानी बोला जाता है. ये देवधानी मानसोत्तर पर्वत में सुमेरु पर्वत के ईस्ट में स्थित है. इसी तरह से यमराज की राजधानी जो साम्य मानी है, यमराज की राजधानी दक्षिण में स्थित है. वरुण देव की राजधानी नीमलोचली पश्चिम में स्थित है और सोम देव की राजधानी विभावरी नॉर्थ में स्थित है. और इन चारों स्थानों पे चूंकि सुमेरु पर्वत बीच में है और ये चारों स्थान है और सूर्य यहाँ पे गोल गोल चक्कर लगाता है तो चारों स्थानों पे सूर्योदय सूर्यास्त दिन और रात ये पाया जाता है. परंतु जो लोग सुमेरु पर्वत के ऊपर स्थित है वहां पे हमेशा दिन पाया जाता है, वहां पे रात नहीं होती है कभी, क्योंकि सूर्य हमेशा हवा में रहते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं और हमेशा मेरु पर्वत के ऊपर रहते हैं. और सूर्य सूर्यदेव के जो एक पहिया जो है उनके रथ का, उस पहिए का नाम है संवत्सर. और केवल एक ही पहिया है उसको संवत्सर बोलते हैं. इस पहिए का जो एक्सल है उस एक्सेल का एक छोर सुमेरु पर्वत पे होता है और दूसरा छोर मानसोत्तर पर्वत पे होता है. और चूंकि ये पहिया एक्सल के बाहर बंधा हुआ है, इसलिए मानसोत्तर पर्वत के चारों तरफ ये घूमता रहता है। और दूसरे एक्सल जो है ध्रुव लोक से अटैच है, और 12 महीने जो है इस पहिए के 12 स्पोक के जैसे हैं। इस पहिए में जिसको हम बोलते हैं संवत्सर, 12 महीने इसके 12 स्पोक हैं। जैसे बाइक के पहिए में स्पोक पाए जाते हैं, उस प्रकार से इसमें 12 स्पोक हैं जो कि 12 महीनों को डिनोट करते हैं। और 6 ऋतुएं, इसके 6 सेक्शंस हैं। इसकी रिम जो है, पहिए की जो रिम होती है, उसके 6 सेक्शन है, वो 6 ऋतुओं को डिनोट करते हैं। और चतुर्मास जो 3 पाए जाते हैं, वो इसके 3 सेक्शन को मिला के जो हब बनती है उसको डिनोट करते हैं। सूर्य देव का रथ 36 लाख योजन बड़ा है, और इसके घोड़े जिनका गायत्री के पीछे जिनका नाम रखा गया है, इन घोड़ों को चलाते हैं अरुण देव। अरुण और गरुण ये दोनों भाई हैं। अरुण देव जो हैं उनसे सूर्य देव के वो हैं चालक, सूर्य देव के ड्राइवर हैं अरुण देव। और अरुण सूर्य के सामने बैठते हैं, और यद्यपि वो घोड़े चलाते हैं परंतु सूर्य देव की भी स्तुति करते रहते हैं। सूर्य देव के सामने बैठ के रथ को चलाते हैं और सूर्य देव की स्तुति करते हैं। और सूर्य देव के आगे आगे 60,000 ऋषि मुनि रहते हैं। 60,000 ऋषि मुनि जिनको वायली खिल्यास बोलते हैं, वो भी भगवान सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। अभी सूर्य देव से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा होता है। यहाँ पे एक मॉडर्न साइंस से कॉन्ट्रडिक्शन होता है। मॉडर्न साइंस बोलता है कि सूर्य दूर है, चंद्रमा पास में है। वैदिक साइंस बोलता है कि चंद्रमा सूर्य से 1 लाख योजन दूर है। इसलिए प्रभुपाद बताते थे कि जो जिस चंद्रमा को ये लोग चंद्रमा समझते हैं, वो चंद्रमा वास्तविकता में कोई दूसरा ग्रह है। इसलिए आधार पर बोला जाता है कि मून मिशन जो है वो हॉक्स है। मून मिशन कोई सही नहीं है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको रसिया से आगे निकलने के लिए उस मिशन को ऑप्ट किया, क्योंकि श्रीमद भागवतम में बताया जाता है कि चंद्रमा सूर्य से 1 लाख योजन ऊपर है, और चंद्रमा सूर्य से ज्यादा तेज चलता है। और इसलिए 2 फोर्टनाइट में सूर्य का 1 साल खत्म हो जाता है। चंद्रमा ज्यादा ज्यादा फास्ट चलता है। और बहुत सारे स्टार हैं, 28 28 प्रकार के तारे हैं, अभिजीत तारे। ये सभी तारे चंद्रमा से भी 2 लाख योजन ऊपर स्थित है। ये सभी समय चक्र में स्थित हैं और सुमेरु पर्वत के चारों तरफ घूमते हैं। अभी चंद्रमा के बाद वीनस, वीनस जो है इन स्टारों इन तारों से भी 2 लाख योजन ऊपर है। कई बार वीनस सूर्य के आगे घूमता है, कई बार सूर्य के पीछे घूमता है, कई बार साथ में घूमता है। वीनस के बाद मरकरी, वीनस से 2 लाख योजन ऊपर है। मरकरी के बाद मार्स, मंगल ग्रह, मरकरी से 2 लाख योजन ऊपर है। जुपिटर मार्स से 2 लाख योजन ऊपर है। शनि जुपिटर से 2 लाख योजन ऊपर है। और शनि से 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि मंडल है। सप्तऋषि का तारा मंडल है। सप्तऋषि हमेशा, 7 ऋषि जो है, हर मन्वंतर में 7 ऋषि बदल जाते हैं। जब इंद्र का गवर्नमेंट बदलता है तो सभी के सभी ऋषि भी बदल जाते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? सूर्य है, सूर्य से ऊपर 1 लाख योजन दूर ऊपर मून है। मून से 1 लाख योजन 2 लाख योजन ऊपर 28 प्रकार के तारे हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर मरकरी है। मरकरी से 2 लाख योजन ऊपर मार्स है। उससे 2 लाख योजन ऊपर जुपिटर है। उससे 2 लाख योजन ऊपर सैटर्न शनि है, और शनि से 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि है, और सप्तऋषि से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है, जहां पे ध्रुव महाराज को भगवान ने भेजा था। ये ध्रुव लोक आध्यात्मिक संसार का हिस्सा है जो कि भौतिक संसार में पाया जाता है। सप्तऋषि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर है, भगवान विष्णु का लोक है। और ये ध्रुव लोक पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, क्योंकि ध्रुव लोक के चारों तरफ सभी के सभी तारे घूमते हैं। ध्रुव लोक के केंद्र बिंदु है। जितने भी ये नक्षत्र तारे हैं वो ध्रुव लोक के चारों तरफ घूमते हैं। मॉडर्न साइंस बोलता है कि सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, जबकि वैदिक साइंस बताता है कि सूर्य खुद भी घूम रहा है, और पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो ध्रुव लोक के चारों तरफ घूमता है। तो ध्रुव लोक को इस संसार का केंद्र बिंदु बोलते हैं। हालांकि मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है कि ध्रुव लोक जो है वो स्थित होता है, क्योंकि आकाश में आप देखेंगे ध्रुव तारा हमेशा एक ही जगह पे दिखाई देता है। सारे के सारे तारे आप देखेंगे रात से लेकर सुबह तक बदल जाती है उनकी लोकेशन, परंतु ध्रुव तारा जो है वो एक ही स्थिति में होता है। ध्रुव मतलब अचल, उसको भगवान ने वरदान दिया है कि उसके चारों तरफ ब्रह्मांड घूमता है, ध्रुव तारा हमेशा अचल रहता है। जिस प्रकार से बुल, जिस प्रकार से बैल को बांधा जाता है और एक एक खूंटी से बांध दिया जाता है, तो वो खूंटी जो है सेंट्रल केंद्र बिंदु जो खूंटी है वो ध्रुव तारा कहलाता है। उससे सभी के सभी प्लैनेट बंधे हुए हैं और सारे के सारे प्लैनेट ध्रुव के चारों तरफ तो चक्कर लगाते हैं। ये सारे के सारे प्लैनेट भगवान कृष्ण के दास हैं और सभी अपने अपने चैरियट्स में, अपने रथों में बैठते हैं और भगवान का ऑर्डर पालन करते हैं। ये सारी की सारी मैकेनिज्म को एक शिशुमार के जैसा माना जाता है। शिशुमार एक संस्कृत शब्द है, शिशुमार का मतलब होता है डॉल्फिन, जो डॉल्फिन मछली का साइज आकार होता है, उसी प्रकार से शिशुमार चक्र होता है। तो ये शिशुमार चक्र सभी प्लैनेट मिला के शिशुमार के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इस कई बार शिशुमार चक्र को योगी लोग ध्यान भी करते हैं। आप पतंजलि योग सूत्र में देखेंगे तो शिशुमार चक्र का नाम आता है, योगी लोग उस पर ध्यान देते हैं। और इसको भगवान के विराट रूप का हिस्सा भी बोला जाता है। शिशुमार का सिर नीचे तरफ होता है, उसका शरीर घूमता होता है और ध्रुव लोक इस शिशुमार के पूंछ के किनारे पे स्थित होता है और इसके शरीर पे, इसकी पूंछ पे स्थित होते हैं देवताओं के लोक इंद्र अग्नि, और इस पूंछ के बेस में स्थित होता है विधाता के प्लेनेट सप्तऋषि। इसके हिप्स पे होते हैं और अलग अलग स्टार अलग अलग स्थान पे होते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड को एक डॉल्फिन आकार का शिशुमार बोला जाता है, शिशुमार चक्र बोला जाता है। अभी ध्रुव लोक से 10 मिलियन योजन ऊपर होता है महरलोक, महरलोक से 20 मिलियन योजन ऊपर होता है जनलोक, जनलोक से 80 मिलियन ऊपर होता है तपोलोक, तपोलोक से 120 मिलियन योजन ऊपर होता है सत्यलोक, ब्रह्मा जी का निवास स्थान। और ये इसके बाद जो भगवान विष्णु का लोकल वैकुंठ प्लेनेट है सत्यलोक, वो सत्यलोक से भी ऊपर है 26,20,000 योजन सत्यलोक से ऊपर भगवान विष्णु का लोक बोला जाता है। और उस भगवान विष्णु के लोक के ऊपर ब्रह्मांड की परत आ जाती है, ब्रह्मांड वहां पे खत्म हो जाता है, कवरिंग्स ऑफ द यूनिवर्स उस स्थान पे चालू हो जाती है। यहाँ ये हमने देखा सूरज के ऊपर तक का डिस्क्रिप्शन, सूरज से ऊपर क्या क्या है, इसके बाद हम देखेंगे सूरज से नीचे क्या क्या है। सूरज से 10,000 योजन नीचे होता है राहु, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है, सिंहिका का पुत्र। और सन ग्लोब 10,000 योजन है, मून ग्लोब 20,000 योजन है और राहु 30,000 योजन बड़ा है। तो जो हम एक्लिप्स बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, वो राहु अटैक करता है या तो अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन राहु अटैक करता है, चूंकि राहु 30,000 योजन बड़ा है। 30,000 योजन राहु मंडल है, 20,000 योजन चंद्र मंडल है, 10,000 योजन सूर्य मंडल है, इसलिए राहु जो है वो सूर्य पे अटैक करता है, सूर्य और चंद्र पे अटैक करता है। और भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को भेजते हैं राहु के अटैक को खत्म करने के लिए। और सुदर्शन चक्र से जब जब बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, तो राहु फिर सूर्य चंद्र को छोड़ देता है। इस प्रकार से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का विनाश करने के लिए हमेशा भगवान अपने सुदर्शन चक्र को भेजते हैं। अभी राहु से 10,000 योजन नीचे होता है सिद्ध लोक, चारण लोक और विद्याधर लोक, और इनसे नीचे होते हैं 100 योजन नीचे। इनसे नीचे मतलब धरती से 100 योजन ऊपर, मतलब धरती से 800 मील ऊपर होते हैं अंतरिक्ष, जहां पे यक्ष का लोक होता है, राक्षस लोक होते हैं, पिशाच लोक रहते हैं, और उसके नीचे अंतरिक्ष आता है जहां तक हवाएं चलती हैं। अंतरिक्ष का मतलब जहां तक हवा चलती है, अंतरिक्ष के बाहर जाने से हवाएं खत्म हो जाती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हवाएं चलती हैं, बादल हम जो देखते हैं ये अंतरिक्ष का हिस्सा है, इसके ऊपर हवाएं नहीं आती हैं, अंतरिक्ष के बाहर जाने पे वैक्यूम आ जाता है। अभी ये डिस्क्रिप्शन हो गया धरती के ऊपर तक का। धरती के नीचे का डिस्क्रिप्शन आता है, धरती के नीचे 7 प्लेनेट हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पातल, ये सभी भूमंडल के समान है। अभी अगर आप इमेजिन करेंगे तो भूमंडल को अगर आप एक प्लेट के जैसा मानते हैं, एक प्लेट जो समतल प्लेट है, तो उसी तरीके की प्लेट्स नीचे हैं, अतल अतल भी एक भूमंडल के जैसा प्लेट है, वित्तल एक भूमंडल के जैसा प्लेट है, और ये सारी सारी की सारी प्लेट एक दूसरे से जॉइंट है, ये एक दूसरे से दूर है, परंतु एक कटोरी जैसे बहुत सारी प्लेट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, एक रॉड हमने लगाया उसमें नीचे प्लेट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो भूमंडल, उसके नीचे अतल, फिर वित्तल, फिर सुतल, तलातल, ये एक ही डायमेंशन है इन सबका। सबसे पहले वित्तल है जो कि भूमंडल से 10,000 योजन नीचे है, और सबसे नीचे पाताल है जो कि 70,000 योजन नीचे है। पाताल से 30,000 योजन नीचे शेषनाग रहते हैं, शेषनाग जो जो कि गर्भोदक समुद्र में है, और गर्भोदक समुद्र जो है 24 करोड़ 98 लाख योजन गहरा है। गर्भोदक समुद्र जहाँ पे गर्भोदक साई विष्णु रहते हैं, उस समुद्र की गहराई बताई गई है 24 करोड़ 98 लाख योजन डीप। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली इमेजिनेशन से बाहर है। भगवान का सृष्टि बहुत अनलिमिटेड है, हम अपने केवल 200-250 ग्राम के ब्रेन से समझना बहुत कठिन है भगवान की सृष्टि को। तो धरती के नीचे जो 7 लोअर प्लेनेटरी सिस्टम होते हैं उनको बील स्वर्ग बोला जाता है, क्योंकि वहां पे भी लोगों को बहुत ऑपुलेंस होती है, देवता देवता उस ऑपुलेंस को एंजॉय करते हैं, देवताओं जिस ऑपुलेंस को एंजॉय करते हैं उससे भी ज्यादा ऑपुलेंस कई बार धरती के नीचे स्वर्ग में पाई जाती है। बहुत सुंदर सुंदर घर हैं, सुंदर अप्सराएं निवास करती हैं, और मेनली वहां पे दैत्य, दानव और नाग इन लोकों में रहते हैं। इन लोगों को बहुत सुंदर बनाया है मय दानव ने। मय दानव एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, जैसे देवताओं में विश्वकर्मा है उसी प्रकार से दानवों में मय दानव है। मय दानव ने बहुत अच्छी अच्छी सिटीज बनाई है जिनके अंदर अच्छे अच्छे घर हैं और बहुत अच्छे अच्छे गार्डन हैं। बड़े बड़े नाग वहां पे निवास करते हैं, सेलेसियल सर्पेंट, और उन चूंकि बील स्वर्ग, धरती के नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, भूमंडल जो होता है भूमंडल सूर्य के प्रकाश को ढक देता है, तो धरती के नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। तो ये प्रश्न आता है कि धरती के नीचे जो लोग हैं उनको कैसे प्रकाशित किया जाता है। वहां पे बड़े बड़े जो नाग होते हैं उन नागों के सिर पे मणियां होती हैं, उन मणि से जो प्रकाश निकलता है वो सारे लोगों को प्रकाशित करता है। और इन प्लैनेट्स के जो जीव हैं वो अलग अलग प्रकार के ड्रिंक पीते हैं जिससे उनका शरीर हमेशा शक्तिशाली रहता है। इन लोगों को केवल यही डर होता है, इनको बुढ़ापे इस चीज का डर नहीं होता है उस लोक में, क्योंकि शरीर इतना इतना शक्तिशाली होता है कि उनको बुढ़ापा इतना नहीं आता है, बुढ़ापे का फीलिंग नहीं आता है, परंतु मृत्यु का डर सभी को होता है। भगवान कृष्ण जो मृत्यु काल चक्र जो है उसके कारण सभी डरते हैं। अतल लोक में माया दानव के पुत्र बल 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 ने 96 प्रकार की शक्तियों को निर्मित किया है, जिसकी जिसका उपयोग अभी भी स्वामी और योगी करते हैं। जब कोई व्यक्ति अतल लोक में जाता है तो वहां पे 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, कामिनी, स्वयंवरिणी और कुमश्चली। ये 3 स्त्रियां उस व्यक्ति को पकड़ लेती हैं, उसको सोमरस पिलाती हैं और फिर वो इसके उसके साथ एंजॉय करते हैं। इस तरह से ये वो स्त्रियां उस जो भी व्यक्ति वहां पे जाता है उसको अतल लोक में इस भौतिक संसार का सुख प्रदान करते हैं। ऐसा करके व्यक्ति वहां पे इल्यूजन हो जाता है, उसके अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति आ जाती है और वो अपनी मृत्यु को भी नेग्लेक्ट करता है, परंतु फाइनली मृत्यु को प्राप्त होता है। अतल लोक के नीचे वितल लोक आता है जो कि भगवान शिव भी वहां पे निवास करते हैं, और भगवान शिव के जो घोस्टली एसोसिएट भूत प्रेत जो है वो वितल लोक में निवास करते हैं। भगवान शिव वहां पे भवानी के साथ रहते हैं, भवानी के साथ रहते हैं और वहां से वो जीवों को प्रकट करते हैं। और भगवान शिव के शरीर से हातकी नदी का जन्म होता है, और इससे सोने का जन्म होता है। हातक सोने का एक नाम है, तो भगवान भगवान शिव का जो सीमन होता है उससे सोने सोने का जन्म होता है। वितल लोक के नीचे सुतल लोक है जहाँ पे बलि महाराज निवास करते हैं और भगवान वामन देव उनके गार्ड के जैसे निवास करते हैं। जब रावण एक बार बलि महाराज को चैलेंज करने के लिए आए थे तो वामन देव ने उनको जस्ट अपने अंगूठे से टच किया था और रावण 10,000 योजन दूर फेंक गए थे लंका में। उसके बाद से रावण ने कभी भी सुतल लोक पे अटैक नहीं किया। सुतल लोक के नीचे तलातल लोक आता है जो कि मय दानव के द्वारा राज्य किया जाता है। मय दानव उन सभी दानवों के राजा हैं जिनको मायावी शक्तियां आती हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरा को मारने के बाद मय दानव से प्रसन्न होकर उनको अपना राज्य लौटा दिया था, और तब से मय दानव इस तलातल लोग पे राज्य करते हैं। तलातल के नीचे महातल आता है। महातल कद्रु के पुत्र, कश्यप की पत्नी कद्रु थी, उनके पुत्र नाग हैं, वो महातल में निवास करते हैं। तक्षक, तक्षक नाग, कालिया नाग, ये सब महातल के निवासी हैं। तक्षक जिसने परीक्षित महाराज को डसा था, कालिया जो कि यमुना में जिसको भगवान ने कालिया दहन किया, कालिया कालिया हिदन किया था, वो इस महातल के निवासी हैं, महातल में रहते हैं। महातल के नीचे आता है, महातल के जो स्नेक हैं, जो भी महातल में सांप निवास करते हैं, उनको गरुड़ से हमेशा डर लगा रहता है। गरुड़ के डर में हमेशा वो लोग रहते हैं। और महातल के नीचे रसातल आता है। रसातल में दिति के पुत्र दैत्य और दनु के पुत्र दानव निवास करते हैं। यहाँ पे निवात कवच निवास करते हैं। निवात कवच एक स्पेशल टाइप के राक्षस होते हैं जिनको देवता भी नहीं हरा पाते हैं। जब अर्जुन, महाभारत में डिस्क्रिप्शन आता है कि अर्जुन जब देवलोक में गए थे तो शिक्षा प्राप्त होने के बाद इंद्र ने अर्जुन से प्रार्थना की थी कि आप निवात कवच को खत्म कर दीजिए, तो अर्जुन ने अकेले सभी निवात कवच को खत्म कर दिया था। उससे पता चलता था कि अर्जुन जो थे इंद्र से भी बड़े, इंद्र से भी शक्तिशाली थे धनुर्विद्या में। निवात कवच को इंद्र खत्म नहीं कर पाए थे, अर्जुन ने खत्म कर दिया था। और पाताल, फिर रसातल के नीचे पाताल आता है जिसको वास्तविक नाग लोक बोला जाता है। वहां पे नाग नाग राजा वासुकी निवास करते हैं। वहां पे कुछ कुछ हैं जो कि जिनके 5 फन होते हैं, कुछ के 10, किसी के 10, किसी के 1000 फन होते हैं, और इनके फनों के ऊपर जो ज्वेल्स होते हैं उससे पूरा नागलोक में प्रकाश होता है। पाताल से 30,000 योजन नीचे भगवान अनंत शेष निवास करते हैं। भगवान अनंत निवास करते हैं जिनको संकर्षण बोला जाता है, और ये संकर्षण भगवान शिव के भी मालिक हैं। भगवान शिव इन पे ध्यान करते हैं। जब कोई व्यक्ति, ये संकर्षण जो है इन्हीं से संसार में फॉल से वो निकल के आता है, और भगवान शिव इन्हीं संकर्षण के भक्त हैं। जो भगवान शिव को हम देखते हैं वो नाम का जप करते हैं, वो इन्हीं संकर्षण का नाम का जप करते हैं। ये संकर्षण पाताल से 30,000 योजन नीचे निवास करते हैं। जब संसार के विनाश का समय आता है, एक्चुअली संकर्षण के बारे में बताते हैं कि संकर्षण के सिर पे पूरा ब्रह्मांड स्थित है, परंतु उनको फील ही नहीं होता। उनके सिर पे ब्रह्मांड होता है, वो सरसों के बीज के जैसा लगता है, कोई उसका वेट नहीं होता है, इतने बड़े हैं संकर्षण। और प्रलय के समय भगवान संकर्षण गुस्सा होते हैं। इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि ज्यादातर जीव पाप करते हैं और भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में नहीं जाते हैं, भौतिक संसार में ही पाप में लगे रहते हैं। तो वो थोड़े से गुस्सा होते हैं और उनके दो भौहों के बीच, आईब्रोज के बीच में से रुद्र निकल के आते हैं, और फिर वो रुद्र तांडव नृत्य करते हैं। संकर्षण के भौहों से रुद्र निकलते हैं, रुद्र का तांडव नृत्य जब प्रारंभ होता है तब तो संसार पूरी तरह से विनाश हो जाता है। और इन भगवान संकर्षण के सामने हमेशा उनके भक्त निवास करते हैं और उनको उनको हमेशा प्रे करते हैं। भगवान अनंत देव, संकर्षण का मेन मिशन है भौतिक संसार को नष्ट करना। यद्यपि वो बहुत गुस्से में रहते हैं कि कैसे जीव भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, परंतु वो अपने गुस्से को हमेशा शांत रखते हैं, और केवल जब प्रलय का समय आता है तभी वो इस गुस्से को उपयोग करते हैं। भगवान शंकर नीले कपड़े पहनते हैं और सिंगल इयररिंग पहनते हैं। इनकी दोनों भुजाएं में बल हल रखा रहता है। जैसे भगवान बलराम जो है वो संकर्षण है, तो वो हल बलदाव बोला जाता है, उनको हल के साथ निवास करते हैं। महाराज परीक्षित ने जब इतना सारा डिटेल सुना तो उसके बाद महाराज परीक्षित ने ये डिटेल सुनने के बाद अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि इतने सारे लोक हैं, इतने सारे लोकों में किस प्रकार से जीव अलग अलग जगह पे स्थित रहते हैं, वो जीवों को क्यों ऐसी स्थितियां दी गई हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन बताते समय सुखदेव गोस्वामी फिर नरक का डिस्क्रिप्शन करते हैं। 28 प्रकार के नरकों का डिस्क्रिप्शन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। वो डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी जरूरी है सुनना, कौन व्यक्ति क्या प्राप्त करता है और किस प्रकार के नरक लोक में जाता है। सुखदेव गोस्वामी बताना चालू करते हैं कि तीन, सामान्यतः लोग 3 गुणों में रहते हैं, 3 गुणों के आधार पर कार्य करते हैं। जो सत्वगुण में कार्य करते हैं वो ऊंचे के लोकों में जाते हैं, जो रजोगुण में कार्य करते हैं वो इसी संसार में रहते हैं, भूलोक में रहते हैं, जो तमोगुण में करते हैं वो नीचे के लोकों में चले जाते हैं। तो जो तमोगुण में रहते हैं वो पाप के कार्य करते हैं, और उन्होंने कितना पाप किया उसके आधार पर उनको अलग अलग पाप के जीवन में रखा जाता है। और जो इस प्रकार से पाप के कार्य करते हैं ये जानते हुए भी कि कि क्या पुण्य है क्या पाप है, ये जानते हुए भी जो व्यक्ति पाप करते हैं उनको फिर नरक लोकों में भेजा जाता है। ऐसे हजारों नरक लोक हैं, उसमें से कुछ मेन नरक लोक भागवत में डिस्क्राइब किए गए हैं, 28 प्रकार के। और ये सारे के सारे नरक लोक पाताल लोक के नीचे स्थित होते हैं। गर्भोदक समुद्र जो कि 30,000 योजन नीचे था, गर्भोदक समुद्र के ऊपर और पाताल लोक के नीचे नरक लोक स्थित है। गर्भोदक समुद्र के जस्ट ऊपर है और पाताल के नीचे है। पितृलोक भी इसी गर्भोदक समुद्र और इसके बीच में आता है। पितृलोक जहाँ पे यमराज निवास करते हैं, वो पितृलोक एक्चुअली यमराज का घर है और नरक लोक यमराज का ऑफिस है। यमराज हमेशा नरक लोक में निवास नहीं करते हैं, पितृलोक में निवास करते हैं, परंतु उनका ऑफिस नरक लोक में है, तो ऑफिस में जाते हैं वो नरक लोक में। जो यमदूत जिस जो भी व्यक्ति पाप करता है, यमदूत उसको पकड़ के लाते हैं, यमराज उनको जज करते हैं और फिर उनको एक एक उनके पाप के आधार पर उनको अलग अलग नरक लोकों में भेजते हैं। अभी सुखदेव गोस्वामी 28 प्रकार के नरकों का डिस्क्रिप्शन प्रारंभ करने वाले हैं। ये डिस्क्रिप्शन ध्यान से सुनिएगा। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की स्त्री के साथ भौतिक संपर्क करता है, दूसरे के बच्चों को प्राप्त करता है, दूसरे के पैसे को हड़प लेता है, उसको तामिश्र नाम के एक नरक में डाला जाता है। क्या क्या कार्य करता है? जो दूसरे की वाइफ को वाइफ के साथ संबंध बनाता है, हड़प लेता है या उसके पैसे को हड़प लेता है, उसको तामिश्र नरक में डाला जाता है। तामिश्र नरक में उसको भूखा रखा जाता है, कोई पानी नहीं दिया जाता है, और यमदूत उसको लगातार मारते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, उसके कारण वो बार बार बेहोश होता है। जब वापस आता है फिर से उसको मार पड़ना चालू हो जाता है। ये तामिश्र है। इसके बाद जो व्यक्ति दूसरे को चीट करता है और चीट करके उसके पत्नी को हड़पता नहीं है, परंतु धोखे से या क्या बोलते हैं, धोखा देके या चुपचाप उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, उसके लिए एक दूसरा लोक है, उसको बोला जाता है अंधतामिश। अंधतामिश इतना खतरनाक लोक है कि वहां पहुंचने के पहले ही जीव को इतनी मार पड़ती है कि वहां पहुंचने के पहले ही जीव बेहोश हो जाता है, इसलिए इसका नाम है अंधतामिश। सामान्यतः अगर देखेंगे तो कलयुग में ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग, ये सब नॉर्मल है, दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाना ये सब पाप नॉर्मल है। दैट मीन्स उससे हम समझ सकते हैं कि कलयुग में ज्यादातर लोग तमिश से अंध तमिश से लोक में ही जाने वाले हैं। स्वर्ग लोक में जाना कलयुग में बहुत कठिन है। ज्यादातर लोग नरक का पासपोर्ट और वीजा कटा चुके हैं, जैसे ही शरीर छूटेगा तो नरक में जाएंगे। इसके बाद तीसरा नरक आता है, उसको बोला जाता है रव रव। जो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है और दूसरे जीवों को परेशान करता है, खुद खुद अपने जीवन को जीने के लिए, जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख पहुंचाता है, उसको रौरव नरक में डाला जाता है। वहां पे कुछ प्रकार के एक जानवर होते हैं जिनको रुरुस बोला जाता है। ये जानवर बहुत सांप के जैसे जानवर होते हैं और उस व्यक्ति को हमेशा काटते रहते हैं, डसते रहते हैं। इसी तरह से जो लोग दूसरे को मार के जीना चाहते हैं उनको महारौरव में भेजा जाता है। जो लोग ऐसे होते हैं जो जो पशुओं को मार के उनको कुक करते हैं, उनका कुकिंग करते हैं और खा जाते हैं, केवल अपने पेट की संतुष्टि के लिए, अपनी जीभ की संतुष्टि के लिए जो पशुओं को मारते हैं उनको कुक करके खा जाते हैं, उनको उनको भोजन बना के खा जाते हैं, उनको यमदूत एक स्पेशल नरक में ले जाते हैं, उसको बोला जाता है कुंभीपाक नरक। जितने भी मांसाहारी लोग हैं वो इस लोक में जाने वाले हैं, कुंभीपाक नरक। इस लोक में क्या होता है, एक तेल का बहुत बड़ा वो होता है, गरम तेल उसमें उबलता रहता है, उस गरम तेल में डाल दिया जाता है व्यक्ति को। जैसे हमने पशुओं को कुक किया है वैसे हमें कुक किया जाता है, गरम तेल में डाल के उबाल दिया जाता है। इसी तरह से जो ब्राह्मण को मारते हैं उनको कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। कालसूत्र जो है कॉपर से बना हुआ है और कॉपर को जब गर्म किया जाता है आग के द्वारा, तो कॉपर का सरफेस बहुत गर्म हो जाता है, और जिसने ब्राह्मण को मारा है उसको भूखा और प्यासा रख के इसी सरफेस के ऊपर रखा जाता है और उसको हंटर मारे जाते हैं, पिटाई की जाती है। तो इतना गर्म होता है नीचे से कि वो नीचे से जलता रहता है, ऊपर से उसको मारते रहते हैं। और कितने समय तक, उस ब्राह्मण के शरीर में जितने बाल होते हैं उतने उतने सालों तक उस व्यक्ति को इस प्रकार से दर्द दिया जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति वैदिक रास्ते से भटक जाता है, और वैदिक रास्ते से भटक के जो व्यक्ति पाप के रास्ते में जाता है, उसको असी पत्र वन नामक नरक में भेजा जाता है। यमदूत वहां पे उसको लगातार कोड़े मारते हैं, जिससे वो यहाँ वहां भागता है, परंतु वहां पे ऐसे पेड़ हैं कि उन पेड़ों से टकराओ तो खून आ जाता है, पेड़ जो है वो ब्लड ब्लेड के जैसे है। अभी ये प्रश्न आता है कि जब शरीर तो यहाँ छोड़ दिया, तो वहां पे कौन से शरीर में पेन दर्द दिया जाता है? नरक में दुख भोगने के लिए एक स्पेशल शरीर मिलता है, उस शरीर को बोला जाता है यातना शरीर। और उस यातना शरीर को की स्पेशलिटी होती है कि वहां पे आपको कष्ट मिलता है परंतु मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वो शरीर ही कष्ट भोगने के लिए है, तो आपकी मृत्यु नहीं होगी परंतु कष्ट मिलता रहेगा। इस प्रकार का एक स्पेशल शरीर नरक में प्रदान किया जाता है, इसी कारण से, जिससे कि व्यक्ति को लगातार कष्ट दे दिया जा सके। इसके बाद आता है कोई ऐसी गवर्नमेंट या कोई ऐसा राजा जो कि निर्दोष लोगों को भी दंड देता है, ब्राह्मण को परेशान करता है, उसको, उस राजा को या उस लीडर को सूकर मुख नाम से नरक में ले जाया जाता है, जहां पे उसके शरीर को जैसे गन्ने को मार मार के उसका जूस निकाला जाता है, वैसे उस व्यक्ति के शरीर को पीट पीट के उस व्यक्ति का जूस निकाला जाता है। इस प्रकार से उसको टॉर्चर करके व्यक्ति बहुत ज्यादा रोता है और बेहोश होता रहता है, जैसे ही होश में आता है फिर से उसको मारना चालू कर देते हैं। जो व्यक्ति दूसरे के गहने को चुराता है, सोने को चुराता है, उसको संदम्स नाम से नरक में भेजा जाता है, जहां पे उसकी स्किन को तोड़ दिया जाता है और मोटे मोटे काले जो है वो एकदम आग में पूरी तरह से गर्म करके लोहे की जो सलाखें हैं उससे उसके शरीर को जलाया जाता है, पूरे शरीर को काटा जाता है, जलाया जाता है। उसको जो व्यक्ति सेक्स क्रिया में इनडिस्क्रिमिनेट होता है, किसी के भी साथ वो संग करता है, भौतिक भोग करता है, उस व्यक्ति को वज्र कानक सालमली जेल मतलब नरक में जाला जाता है। जो व्यक्ति अच्छे घर में जन्म लिया है परंतु अपने कार्यों को नहीं करता है धर्म के आधार पे, उसको वैतरणी नामक नरक में डाला जाता है। वैतरणी में एक नदी होती है जो नरक के चारों तरफ होती है, और ये नदी किससे बनी होती है? ये नदी जो है वो मूत्र और मल, पस, खून, नाखून, मांस, इन सब से मिलकर बनी होती है, और ऐसे ऐसे यहाँ पे मगर होते हैं जो शरीर को खा जाते हैं। वो व्यक्ति चूंकि मरता नहीं परंतु हमेशा सफर करता है अपने पाप के कारण। इसी तरह से एक और लोक होता है जिसका नाम होता है प्राण रोध। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो कि पालतू पशुओं को पालते हैं, फिर उनको शिकार करते हैं, फिर मार डालते हैं, उनको प्राण रोध नाम से जे नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत घमंडी होता है, उसको विषासन नाम से नरक में डाला जाता है, जहां पे यमदूत उसको मारते रहते हैं। इसी तरह से एक नरक है जिसको बोला जाता है लाला भक्ष। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्लास के कोई मेल व्यक्ति अपनी पत्नी को फोर्स करता है उसका सीमन पीने के लिए, मतलब लस्टी डिजायर्स के कारण, काम की इच्छा के कारण अगर अपनी पत्नी को फोर्स करता है उसका सीमन पीने के लिए, तो उसको डाला जाता है लाल भक्ष नाम से नरक लोक में, जहां पर उसको सीमन की एक नदी में फेंक दिया जाता है और उसको वो सीमन पीना पड़ता है, और पीछे से उसको लगातार मार पड़ती रहती है। इसके साथ, इसके अलावा दूसरा नरक है, ऐसा व्यक्ति जो कि फॉल्स विटनेस सुनाता है, लोगों को झूठ बोल के फंसाता है, उसको एक माउंटेन से फेंका जाता है, ये 100 योजन ऊंचे माउंटेन से फेंका जाता है उल्टा, और नीचे गिरता है, उसका पूरा शरीर टूट जाता है, फिर उसको ऊपर बुलाया जाता है, फिर उसको फेंका जाता है। कोई ब्राह्मण जो कि शराब पीता है, या क्षत्रिय या वैश्य जो कि शराब पीते हैं, उनको अयापन नामक नरक में भेजा जाता है, जहां पे यमदूत उनके गले में लोहे को पिघला के उनके गले में डालते हैं शराब के जैसे। इस प्रकार से ये नरक का डिस्क्रिप्शन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से कंक्लूड करते हैं कि यमराज के लोक में हजारों हजारों ऐसे नरक लोक हैं जहां पे पापी लोग हमेशा दुख प्राप्त करते रहते हैं। यद्यपि पुण्य के लोग देवताओं के लोक में जाते हैं, परंतु पुण्य पुण्यशाली लोग और पापी लोग दोनों अपने सुख या दुख भोग करके फिर से भौतिक संसार मतलब धरती पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे पांचवा स्कंद भी खत्म होता है। और इसके बाद जब परीक्षित महाराज जब नरक का डिस्क्रिप्शन सुनते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो छठवें स्कंद के प्रारंभ में वो पूछते हैं कि इतने सारे लोग जो इतना दुख प्राप्त कर रहे हैं, इनके दुख का निराकरण कैसे होगा, इनको दुख से कैसे बचाया जाए। तो परीक्षित महाराज के उस प्रश्न के साथ छठवां स्कंद प्रारंभ होता है, पांचवां स्कंद यहाँ पे एंड होता है। छठवें स्कंद में फिर सुखदेव गोस्वामी भक्ति के प्रोसेस को बताने के लिए अजामिल की कथा सुनाते हैं। तो वो हम कल कल स्टार्ट करेंगे, छठवां स्कंद अजामिल की कथा जो है कल स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज का डिस्क्रिप्शन सुन के डर 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 गए होंगे लोग। भागवत में एक्चुअली नरक का डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में दिया गया है। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं कल छठवां
हाय
स्कंद।
कृष्ण।
यस प्रभु।
तो मेरा दो क्वेश्चन है। पहला
हाँ
क्वेश्चन है कि जो जगन्नाथपुरी में जो बाहर जो स्तंभ है और अरुण स्तंभ होती है आई थिंक, तो उसका पर्पस क्या होता है?
अरुण स्तंभ नहीं, वो गरुड़ स्तंभ है ना।
दो स्तंभ है प्रभु, आप देखेंगे एक तो गर्भगृह के सामने एक है और एक मंदिर के अंदर एंटर होने से पहले है। तो
हाँ
जहां तक मुझे पता है जो पहला वाला होता है जो मंदिर के एंटर करते हैं उसको अरुण कहते हैं और अंदर जो सामने रखा है उसको गरुड़ कहते हैं, पता नहीं, तो मुझे कंफ्यूजन है इसमें। मतलब
क्या कंफ्यूजन है? अरुण और
अरुण
गरुड़
मतलब
दोनों भगवान के भक्त हैं, दोनों
ये
भगवान का
दोनों
दर्शन
भाई हैं
कर
क्या?
रहे हैं। अरुण और गरुण, हाँ अरुण और गरुण भाई हैं, विनता के पुत्र हैं वो।
गरुण है या गरुड़ है?
गरुड़, हाँ
अच्छा, तो अरुण और गरुड़ ये दोनों भाई है। अच्छा ओके, तो अरुण का मतलब अरुण स्तंभ का रहना मतलब क्या बताता है
अरुण जो
वो?
है वो सूर्य देव की सेवा करते हैं, गरुड़ भगवान विष्णु की सेवा करते हैं।
अच्छा ओके, दूसरा क्वेश्चन है दो।
अरुण की एक बहुत बहुत हिलेरियस स्टोरी है। एक अरुण से बाली और सुग्रीव का जन्म हुआ था, रामायण में वो स्टोरी आती, सुनना चाहेंगे आप? बहुत
कैसे
अच्छी
ब्रो,
स्टोरी।
बताइए।
एक बार आपने एक सती की स्टोरी आती है, आपको याद है? एक सती के पति मांडव्य मुनि को, मांडव्य मुनि ने उनको श्राप दे दिया था, तो उनके पति को ऐसा श्राप मिला था कि जब सूर्योदय होगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो जो पत्नी थी उन्होंने बोला कि मैं सूर्योदय नहीं होने दूंगी। फिर उन्होंने बोला था कि अगर मैंने सतीत्व अच्छे से पालन किया है तो सूर्य नहीं उगेगा। तो उस दिन सूर्य नहीं होगा था, सूर्योदय नहीं हुआ था। तो नॉर्मली अरुण को कभी छुट्टी नहीं मिलती है, उस दिन सूर्य नहीं उगे थे उस सती के कारण, तो अरुण को छुट्टी मिल गई। कभी उनको हॉलीडे नहीं मिलता है, हम लोगों को तो संडे संडे हॉलीडे मिलता है, उनको हॉलीडे कभी नहीं मिलता क्योंकि सूर्य तो हमेशा चलते रहते हैं। तो उस दिन चूंकि सूर्य उगे नहीं थे इसलिए अरुण को छुट्टी मिल गई। और जब वो छुट्टी पे गए सूर्य देव से परमिशन लेके, तो अरुण को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने एक अप्सरा का वेश धारण किया और अप्सराओं के साथ जाके नृत्य करने लगे। उनको नृत्य करने की इच्छा थी, तो जब उनको अप्सरा ने नृत्य करते हुए देखा तो इंद्र इंद्र ने भी उनको देखा, और इंद्र इमिडिएटली इस अप्सरा से अट्रैक्टेड हो गए, आकर्षित हो गए। तो इंद्र ने बोला कि मैं आपका संग करना चाहता हूँ। तो अरुण तो घबरा गए, वो तो पुरुष थे वास्तविकता में, स्त्री के रूप स्त्री का वेश धारण किया था। तो जब इंद्र ने उनके साथ संग किया तो एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था बाली। तो इस तरह से अरुण देव का वो पुत्र हुआ। फिर अरुण देव वापस आ गए, परेशान भी थे, शर्माते हुए वापस आ गए कि इस प्रकार से हो गया। और जब वो वापस आए सूर्य देव के पास तो सूर्य देव ने पूछा कि क्या हुआ। तो पहले तो बता नहीं रहे थे, फिर सूर्य देव ने जब बार बार पूछा तो उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं गया था इंद्र के लोक में तो इंद्र से पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो सूर्य को भी इंटरेस्ट आया कि आप इतने इतना सुंदर आपका अप्सरा का रूप था, मैं भी वो रूप देखना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला नहीं 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 अभी जरूरत नहीं, मैं रूप नहीं दिखाऊंगा। पर सूर्य ने बोला नहीं नहीं आपको दिखाना पड़ेगा। तो जब सूर्य देव ने उस अप्सरा का रूप देखा तो सूर्य देव अप्सरा के संग से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था सुग्रीव। तो इस प्रकार से बाली और सुग्रीव का दिन एक का जन्म एक ही दिन हुआ था, जिस दिन सूर्य देव की छुट्टी थी और अरुण जो थे वो छुट्टी मनाने के लिए गए थे। छुट्टी मनाने के कारण उनके दो बच्चों का जन्म हो गया, तो वो अरुण के दोनों पुत्र हैं। सूर्यदेव के दोनों पुत्र, सूर्य और इंद्र के दो पुत्र हैं जो कि अरुण के पुत्र हैं वास्तविकता में।
ओके धन्यवाद। तो दूसरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने ध्रुव लोक के बारे में जो जानकारी दी कि मतलब जैसे भागवतम ने बताया था है कि ध्रुव लोक सेंटर में है एंड बाकी सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र सब ध्रुव लोक के चारों परिक्रमा करते हैं, तो प्रो बट मॉडर्न साइंस में तो आज के समय में अगर ये किसी को बताएंगे तो मतलब तो एक्सेप्टेबल ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे उनके सामने रिप्रेजेंट किया जाए इस चीज को अगर मतलब करते हैं।
उनको पहले भगवत गीता का ज्ञान बताइए, जब भक्त बन जाएंगे तब ये सुनाइए, ये हम नए लोगों को थोड़ी सुनाते। नए लोगों के लिए तो पहले शरीर का ज्ञान डीवाइस दीजिए, पहले डीवाइस दे के पॉजिटिव थिंक कर दीजिए, गीता सिखाइए, उसके बाद जब भागवत में आएंगे तब ये सिखाएंगे उनको।
ठीक
जैसे आप लोगों को भी पहले दिन ये सिखाया होता तो नहीं समझ में आता, विश्वास भी नहीं होता, तो नए लोगों को क्यों ऐसा सिखाना है।
थैंक यू।
ओके, कल हम डिस्कस करेंगे, छठवां स्कंध चालू करेंगे कल।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन,
हाँ यस बताइए।
मैं वाल्मीकि जी के बारे में बहुत बोल रही थी कि वाल्मीकि जी जैसे उनका मतलब संत मिलने से पहले उनकी लाइफ में जैसे वो चोरी चपाटी करते गए थे, जब फिर इनके पास संत जी मिले उनसे तो फिर उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई, तो जो पहले कर्म करती थी उनका अपराध लगेगा, उन्हें ये सब भोगना पड़ा होगा।
नहीं, वाल्मीकि जी जब शुद्ध भक्त बन गए थे तो शुद्ध भक्त के कर्मों के नियम को भगवान नलीफाई कर देते हैं। हो सकता है पहले के कुछ कर्म हो, परंतु उन कर्म के नियमों को भगवान नलीफाई कर देते हैं। शुद्ध भक्त चाहे तो भोगने के लिए तैयार होता है, परंतु जब वो शुद्ध हो जाता है तो भगवान उसको पार कर देते हैं। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है ना, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, भगवान भक्त के कर्मों के फल को जला देते हैं, जैसे जैसे भक्त एडवांस करते हैं। तो वाल्मीकि जी चूंकि भगवान राम का नाम लेते लेते इतने शुद्ध हो गए थे, उनके सारे कर्म फल खत्म हो गए थे।
थैंक
प्रभु जी,
हाँ, दिव्यमान बताओ।
प्रभु जी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं मैं।
बताइए क्या प्रश्न है आपको।
मेरा एक ही प्रश्न है कि जैसे जो कितने लोग है, सबसे ऊपर गोलोक है, तो गोलोक में सभी का एक कामधेनु होती है
हाँ, गोलोक में सभी गाय कामधेनु होती है। हाँ
और सभी वृक्ष कल्प वृक्ष होते हैं,
हाँ सभी वृक्ष कल्प वृक्ष होते हैं।
तो उससे तो इंद्र के लोग में तो एक ही कल्प वृक्ष होता है, तो वहां पर तो सभी होते हैं।
हाँ इसलिए आपको इंद्र के लोक में नहीं जाना है, गोलोक में जाना है। ठीक है
हाँ जी, तो
ओके।
जो राक्षस लोग थे फिर वो क्यों इंद्र का लोग प्राप्त करना चाहते थे?
क्योंकि उनको आध्यात्मिक संसार का पता ही नहीं ना, गोलोक जा ही नहीं सकते, गोलोक जाने के लिए शुद्ध भक्ति करनी पड़ती है। रावण को एक बार नारद मुनि ने प्रपोजल दिया था कि आप शुद्ध भक्ति करो तो आपका शरीर मेरे जैसा हो जाएगा, रावण नहीं माना था क्योंकि वो भक्ति करना नहीं चाहते, वो केवल अपनी शक्ति से इंद्र लोक प्राप्त करना चाहते हैं।
धन्यवाद प्रभु जी,
ओके हरे कृष्ण
आप हम
प्रभु
परम पर बचा रही हैं।
हाँ
कृष्णा
पुरुषोत्तम
प्रभु
जी।
जी
यस प्रभु,
प्रभु जी मेरे एक एक क्वेश्चन था। जैसे प्रभु जी हम देखते हैं कि हमें पता होते हुए भी ये जो चीजें हैं मटेरियल दुनिया की, वो चीजें अगर हमें अट्रैक्ट करती हैं तो प्रभु जी वो हमारे पुराने जन्मों के कारण होता है ऐसा, कि जो हमने अनर्थ कर रखे होते हैं हमारे कहीं माइंड में होता है वो भोग करने के लिए इसलिए होता है।
पुराने जन्मों में जो कार्य किए जाते हैं वो माइंड में इम्प्रेशन बन जाते हैं, उन्हीं इम्प्रेशन के कारण वो वेग आता है। जैसे सिंपल चीज है, जैसे कभी हम पहले जब चाय पीते थे, मुझे अपना याद है जब मैं पहले चाय पीता था हॉस्टल में तो चाय की बहुत ज्यादा आदत थी, एक एक दो दो ग्लास भर के चाय पी लेते थे, तो उसमें जब शाम का समय होता था अपने आप सिर में दर्द होने लगता था, क्योंकि वो कोई कार्य हम करते जाते हैं तो वो इम्प्रेशन हमारे माइंड में आ जाता है। तो हमने चूंकि बहुत सारे जन्मों में ये कार्य किए इसलिए वो इम्प्रेशन बहुत डीप है, इसलिए उसके लिए बहुत स्ट्रांग साधना की जरूरत पड़ती है उन इम्प्रेशंस को खत्म करने के लिए।
तो जी स्ट्रॉन्ग साधना मीन्स क्या फॉलो करना पड़ेगा उसके बारे में
सबसे
बताइए।
इम्पोर्टेंट होता है भगवान के नाम का कितने अच्छे से जप कर रहे हैं, भगवान का नाम सबसे ज्यादा शक्ति से कोई अनर्थ को खत्म करता है। अगर भगवान का नाम हम ध्यान पूर्वक कर पा रहे हैं तो हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। भगवान के नाम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए शास्त्र का अध्ययन और बाकी सब वस्तुएं हैं, परंतु नाम जो है वो सेंटर पॉइंट है। तो नाम अच्छा अच्छे से करना चाहिए और इस विशेष दिनों में ज्यादा नाम करने का भी प्रयास करना चाहिए। जब हम कभी धाम में जाते हैं तो कभी समय निकाल के ज्यादा माला करना चाहिए। नाम जो है वो बहुत तेजी से अनर्थ को खत्म करता है, नाम और श्रीमद भागवतम का अध्ययन और वैष्णव से सुनना। भक्ति की सारी वस्तुएं प्योरीफाई करती हैं, पर सभी के अंदर भगवान का नाम सबसे स्ट्रांग होता है, और आध्यात्मिक गुरु के प्रति सरेंडर की भावना जो है वो भी बहुत जल्दी प्योरीफाई करती है।
जी। और प्रभु जी, एक हमें एनालिसिस जैसे कहते हैं ना, हमें अपने रिव्यू करते हैं हम लोग, तो अपने अपने प्रभु जी अपने आध्यात्मिक जीवन का हम किस प्रकार से खुद को मतलब रिव्यू करना चाहिए प्रभु जी, हम उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे मीन्स हम क्या क्या करना चाहिए हमें, और किस प्रकार से कि हम सही चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं प्रभु जी। कुछ कभी कभी जैसे आपने बोला प्रभु जी के नाम लेते हुए हमें मतलब श्रीमद् भागवतम का भी मतलब, लेकिन प्रैक्टिकल जब देखते हैं प्रभु जी, मैं श्रीमद् भागवतम भी पढ़ता हूँ बट नाम में मतलब ध्यान कर से मतलब करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब नहीं हो पाता है कभी।
हम कुछ कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं जो कि जिससे हमें पता चलता है कि हम सही रास्ते पे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं पहले भी कभी एक आध क्लास में बताया होगा कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा सर्विस एटीट्यूड बढ़ रहा है कि नहीं, हम दूसरे की सेवा करना चाह रहे हैं कि दूसरे से सेवा लेना चाह रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन है, उससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्रेस कितना हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम दूसरे का सम्मान करना चाहते हैं कि दूसरे से सम्मान लेना चाहते हैं, रिस्पेक्ट। और हमारे साथ में जो है हम उसकी केयर करते हैं कि हम उससे केयर लेते रहते हैं। और दूसरा होता है कि कभी हमारे साथ वाला या दूसरे भक्त अगर ज्यादा एडवांस करते हैं तो हमें खुशी होती है कि इनसिक्योरिटी होती है। और पांचवा, भगवान के प्रति हमारी डिपेंडेंस बढ़ रही है कि हम केवल अपनी प्लान मेकिंग में ही लगे रहते हैं, अपने मटेरियल प्लान बनाते हैं। ये पांच कुछ इंडिकेटर हैं जिससे पता चलता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि रिग्रेस कर रहे हैं।
थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन और है प्रभु जी, वो जो स्टेटमेंट है ना कि सुबह हमें जूतों से मारना चाहिए, रात को अपने दिमाग को झाड़ू से मारना चाहिए, तो प्रभु जी वो मतलब थोड़ा सा बताइए कि वो किस प्रकार से हम उसको अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं, मतलब इसमें
उसका सेंस इस प्रकार से है कि मन में जो भी मन के अंदर इच्छा आती है, अगर हम इस प्रकार से सिस्टम डेवलप कर लें, जैसे आप देखें एक क्या बोलते हैं इस प्रोएक्टिव बोलते हैं, कोई इंग्लिश में एक शब्द होता है, उसका मतलब होता है कि कोई विचार आए तो हम इस प्रकार से अगर सिस्टम सेट कर लें कि उस विचार को एनालाइज करने के बाद एक्ट करें, उसको प्रोएक्टिव बोला जाता है शायद इंग्लिश में। अगर वो फीलिंग हम रखेंगे तो उसके द्वारा जैसे माइंड में सुबह कोई विचार आता है तो तुरंत हम चेक कर सकते हैं कि ये विचार साधु शास्त्र गुरु से आया है कि मन में भोग की इच्छा के कारण आया है। अगर उसको हम एनालाइज करेंगे तो फिर माइंड की बाकी जो भोग की इच्छा है उसको हम हटा सकते हैं। और माइंड को जूते से मारना मतलब उसको प्योरीफाई करने का प्रयास करना, मॉर्निंग साधना को ही इस तरह से बोला जा सकता है, क्योंकि माइंड का मेन जो डिजीज है वो है भोग की इच्छा। उस भोग की इच्छा को सेवा की इच्छा से बदलना जो है वो माइंड को जूते से मारने के सिंबल के जैसा बोला जा सकता है।
ओके। कभी कभी प्रभु जी पुराने पुराने अनर्थों की वजह से प्रभु जी क्या होते हैं, सेंसेस बहुत हाई होते हैं, और जो हम अपने मतलब करना भी चाहते हैं ना कि हम चैंटिंग करने बैठे या कुछ करने, पर सेंसेज हमें मतलब परास्त कर देते हैं। तो जी और मतलब क्या उस टाइम पे क्या उपाय करना चाहिए हमें?
उस टाइम पे बेस्ट उपाय तो रहता है कि अगर कोई भक्त है तो उससे फोन पे बात कर सकते हैं, या कोई भक्त फिजिकली है तो उसके पास जाके बैठ के कर सकते हैं। ऐसे समय पे जब हमारी इंद्रियां हमारा साथ नहीं देती, जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम नहीं रोक पाते हैं, दैट मीन्स हमें कोई दूसरे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। सामान्य भी हम देखते हैं ना कि कभी कभी कुछ केसेस में हमारी शक्ति काम नहीं करती तो हमें दूसरी शक्ति लेनी पड़ती, तो उस समय वैष्णव की शक्ति काम करती है। कोई वैष्णव के साथ हम बैठ के उनसे सिंपल बात करिए, शास्त्र की बात करिए, आप देखेंगे कुछ समय में वो इंद्रियों का जो प्रेशर है वो चला जाएगा।
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, मैं नोट डाउन कर लूंगा प्रभु जी, फॉलो करूंगा नेक्स्ट।
प्रभु जी इसी पर से एक छोटा क्वेश्चन और लास्ट, जिससे आपने पूछा तो जैसे गुरु के सरेंडर के बारे में आपने बताया, तो प्रभु सरेंडर करना और भगवान का नाम लेना, तो जैसे जब भगवान का नाम लेंगे तो ऑटोमेटिकली सरेंडर की भावना आएगी, या सरेंडर का भाव जब तक नहीं रखेंगे तो नाम में रुचि है, मतलब दोनों कैसे रिलेटेड है एक दूसरे के साथ?
दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि सरेंडर की भावना आएगी जब हमारा ईगो खत्म होगा, जब हमारा ईगो खुद ही बड़ा रहता है। सरेंडर का ये मतलब होता है कि हमसे नहीं होगा, अभी हम दूसरे की सरेंड में लेंगे तभी वो हमें बचाएगा। ये सिंपल चीज है, जैसे हम कोई व्यक्ति से लड़ाई हो रही है और हम शक्तिशाली नहीं है तो हम दूसरे व्यक्ति के सरेंड में जाते हैं, सरेंडर करते हैं, तो उसका फीलिंग होता है कि हम अभी नहीं कर पाएंगे अपने दम पे, तो हमें दूसरे की कृपा की जरूरत है। और जब वो फीलिंग आएगी तब नाम अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जब उसको प्यास लगी होगी तभी वो पानी को महत्व समझ पाएगा, अगर उसको प्यास ही नहीं लगी है तो पानी का महत्व नहीं समझ पाएगा। तो वो प्यास जो है वो सरेंडर से बढ़ती है, सरेंडर करेंगे तो अच्छे से नाम ले पाएंगे, अच्छे से नाम लेंगे तो सरेंडर और करेंगे, और फिर और सरेंडर करेंगे तो और अच्छे से नाम लेंगे, तो दोनों एक साथ चलता रहेगा, एक समय आएगा जब हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेंगे।
ओके, थैंक यू।
ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है।
एक प्रश्न है, बताइए।
प्रभु जी मैं श्रीमती राधा रानी के बारे में जानना चाहता हूँ।
श्रीमती राधा रानी के बारे में हम ऐसा करेंगे, हम कोई क्लास में उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के बारे में एक दो मिनट में बताना तो बहुत कठिन है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी भी उनकी नित्य संगिनी है, तो भगवान कृष्ण की जितनी ग्लोरीज है उतनी राधा रानी की भी ग्लोरीज है, तो एक दो मिनट में बताना तो बहुत कठिन है, उनका अलग से डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे।